इंशाल्लाह हम बेहतर अकवा पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक कहाँ तक पहुँचा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद भी तैयार किए और आपका जो दीन फैला वो तलवार के साथ नहीं बल्कि राबतों के साथ फैला। इस जुमले को लिख लें। अगर आप किसी बंदे से राबता नहीं कर सकते दीन के लिए, उसके अपने दीन या उसके दीन, उसकी खैर या आपकी खैर के लिए, तो याद रखिए आप अल्लाह लोक नहीं हैं। यही पढ़ा है ना पीछे, अल्लाह लोग नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ने लोगों को लोगों के साथ घुलने मिलने वाला बनाया। इत्तफाक से मैं भी बात कर रही थी रास्ते में बाजी से, मेरे जहन में भी नहीं था कि इस पर बात हो रही है आजकल, कि आप लोग कम अज़ कम हफ्ते में 3 लोगों को टारगेट करें। आप भी सब करें। कोई बीमार है इस शहर में, कोई परेशान है, कोई बड़े खुश है, पूरे 7 दिन में से अगर आप 3 लोग गोल बना लें अपने लिए। मैं आप सब एक एक को कह रही हूँ, अब ये कोई ड्यूटियाँ नहीं है जो लग रही हैं, ये वो ड्यूटियाँ जो आपने अपने ऊपर लेनी है, और सिर्फ अल्लाह के लिए मिलने चले जाएं। खजूरें हैं घर में वो ले गए, कुछ चावल पके थे चावलों की प्लेट पकड़ लें, कुछ भी नहीं है तो दुआएं ले लें, कुछ भी ना करें लेकिन यकीन करें सिर्फ लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हम आप में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर जाके वहाँ पीछे ना पड़ जाएं, कोर्स शुरू हो रहे हैं, आए क्लासेस में नहीं आ पाते, आप अल्लाह से नहीं जुड़े हुए, आप कुरान से नहीं जुड़े। ये जुमले जब कभी साथी बोल रहे होते हैं मुझसे नहीं सुने जा रहे होते, मैं कहती अगले के दिल पे पता नहीं क्या गुजरती है, कि हम उसको शर्मिंदा करने आए हैं या हम उसको बहुत ही बेदीन समझते हैं। ये ना बोले, केयर कर दें, बीमार है पीछे हो जाए, मैं ज़रा आपका घर साफ़ कर दूँ, और उठ के चुपके से आ जाए, एक लफ्ज़ ना कहें कि क्लास में आए, कुछ ना बोलें, कोई ताना कोई इल्ज़ाम कोई कुछ कहने के बजाय सिर्फ अपनी ज़ात से ये कह दें कि अल्लाह मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि इसको मेरे अंदर खैर दिखे। और ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी के लिए अच्छा चाहें और उसको पता ना लगे। दूर 7 समंदर पार बैठे बंदे को अल्लाह वेव्स दे देता है, कोई इस वक्त आपके लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। थोड़ा सा खुल के बाहर आएं। ये कापियाँ किताबें ये क्लास का 2-4 घंटे का बैठना एक इनटेक है ना, आप और मैं अंदर ले रहे हैं, इसको आउटकम पे बदलिए। इसके बाद निकल क्या रहा है, किसी को क्या लगे, मसा आपकी इस शहर में ताई रहती हैं या आपकी नंद रहती हैं, उनको क्या लगे कि आप बैत अखबा पढ़ने लगे हैं या आपने मुस्तन इंसानियत पढ़ी है या आपने इससे पहले असमाल हुसना सुने हैं और उससे पहले आपने तजवीद की है और आपने नेक के कामों में औरतों का किरदार, उनको क्या लगे। सच्ची बात है, ये ऐसे जैसे मुझे क्या लगे कि आप आज क्या खा के आए हैं, राइट। लोगों को वो लगता है जो आप उनके लिए हैं। जितना अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ले आएंगे ना, इंसान दोस्त बने, इंसान दोस्त बंदा बिल आखिर अल्लाह दोस्त बन जाता है, वो अल्लाह लोक बनता है। ये मजबूरियाँ ये तकलीफ़ें ये वो नहीं, मेरा स्टैंडर्ड इससे बहुत ऊंचा है, मैं नहीं रुक सकती। अल्लाह के नबी ने ये दीन राबतों के ज़रिए फैलाया। देखिए आपने आज एक नाम सुना होगा, बोलूँगी तो सबको समझ आएगा, टेली कम्युनिकेशन। ये तो आज की ज़ुबान है ना, टेली, टेलीफोन टेलीविजन टेली टेली, सभी को पता टेली क्या है। टेली को हटा दे, उस दौर में तो फ़ोन भी नहीं थे, कोई रबते थे, सिर्फ कम्युनिकेशन। अबू बकर सिद्दीक की आपने कई दफ़ा कहानी पढ़ी है कि फजर से पहले घर से निकले थे और मस्जिद नबी में आए और पूछा है तुम में से कोई है जो बीमार को देखा है, थे ना, कौन थे, कोई है जो कुछ सदका कर आया, कोई किसी का काम कर आया, वो अबू बकर थे। कौन सी गाड़ी थी अबू बकर के पास, किस ब्रांड की थी और अबू बकर के मीन्स क्या थे, किसी को मिलने गए ना, ये मिलने की बात कर रही हूँ। 100 लोगों को अपने लिए मिले, 2 लोगों को अल्लाह के लिए मिल के देखें और फिर आप अल्लाह वाले बनेंगे। और मैं जो सोचती हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी की ये कहानी है, मैंने जितना लोगों से सीखा शायद मैंने इतना किताबों से ना सीखा हो। किताबों से थेरी आती है, लोगों से आपको रियलिटी आती है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी आपको समझ आती है। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ेंगे ना, उतना आप भी संजीदा होते जाएंगे और अल्लाह ताला आपसे संजीदगी के साथ काम लेगा। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये गम लगा दे। नबी सल्लम थे लोगों से मिलने वाले, या ग़ारे हिरा में बैठे रहे जब इक़रा बिस्मि रब्बिका की आयतें आईं, उससे पहले बैठे थे। याद रखे पहले बैठना पड़ता, अगर आप क्लासरूम में फोकस्ड होकर नहीं बैठेंगे, एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तो आप अच्छे उस्ताद कभी भी नहीं बनेंगे। जब आप स्टूडेंट बन के बैठते हैं तब भी आपके पांव ज़मीन पर टिके होने चाहिए, आपके फ़ोन बंद होने चाहिए, आप किसी चीज़ को अपने दिल दिमाग में ले आएँ, वो शिर्क हो जाएगा उस वक्त पढ़ाई के साथ। जैसे अल्लाह की ज़ात शिर्क से पाक है, उसकी बात भी शिर्क से पाक है। आप 2-3 साल ऐसे बैठ जाएं दब के, डंटे खाएं, झिड़कियाँ सुने, अपने आप को बिछा दें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे ना, देने वाले बनेंगे, तो फिर खैर वाले बनेंगे। कि जो पूरा लेता नहीं है ना, वो पूरा देता भी नहीं है। जो लेते वक्त संजीदा नहीं है ना, वो देते वक्त भी संजीदा नहीं होगा। जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है ना, वो अच्छा टीचर कभी नहीं होगा। जिसको स्टूडेंट लाइफ में अपने टीचर से प्यार नहीं है ना, उसको टीचर लाइफ में अपने स्टूडेंट से प्यार नहीं होगा। ये याद रखिए, एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़िंदगी में सारी दौलत दे के भी नहीं मिलती। इसके ऊपर है, जो काम करें पूरी संजीदगी से करें, आपका दिल दिमाग नहीं है ना उस चीज़ में, तो फिर ऐवें ही आपने एक जगह रोक ली, तो ना दिल मैं इधर हूँ, दिल मेरा कहीं और है, तो इसी का नाम तो मौत है। देखे, दिल इधर ही होता है, रूह चली जाती है ना, तो रूह निकल जाती है ना, तो चीज़ें मुर्दा हो जाती हैं, डेड होती हैं। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल चीज़ें, यानी पूरी बेस हमने पढ़ ली, अल्लाह के नबी सल्लम ने किस तरीके से लोगों से राबते रखे, और उस राबतों में से अब एक राबता जो किया गया उसको बिल जाबता तौर पे आप कह लीजिए बैते अकबा। याद है, कभी सुना है इसके बारे में? कुछ जानते हैं बैत किसको कहते हैं? सूरह बकरा में पढ़ा था आपने सबसे पहले, अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली ला बैयुन वला खुल्ला, याद है लफ्ज़? तो बैत तिजारत को कहते हैं, लेन देन। तो बैत एक ट्रेडिंग होती है, कुछ लो तो कुछ दो। आम दुनिया की जुबान में तो ट्रेडिंग क्या है, कारोबार, पैसे और रुपए का ना, एक तरफ कमोडिटी होती है और दूसरी तरफ मनी होती है, ऐसी है ना। ब्रेड आपकी कमोडिटी है, और आपने $15 दिए तो वो पैसे दे के ब्रेड ले ली। बैत एक ऐसा सौदा होता है कि कुछ राय तुम मानो, कुछ हम मानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम ने जिस तरीके से लोगों से एग्रीमेंट करने, या असल में एग्रीमेंट की एक बहुत आला किस्म है ना, आप ब्रेक करेंगे रूल्स को ना मैं करूँगी, अगर मैंने किया तो ये पेनल्टी है, आपने किया तो ये है। कभी मैं सोचूँ ना, मेरा दिल बंद होता है, और मेरा इतना दिल करता है कि जन्नत में तो मिलेंगे, अभी दुनिया में अल्लाह के नबी मिले। कभी हम भी कुछ और मत सोच रखते, हमें भी पता होता नबी जिंदा है, हम भी उनसे जाके मिलते। यकीन करें कि अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से काम किया ना, दिस इज़ दी सक्सेसफुल पॉलिसी। बांध के रखते थे लोगों को, और जिनसे कोई कंसर्न नहीं उनको भी कोई गिल्ट नहीं देते थे। तो अल्लाह के नबी ने जो बैत की वो बैत अकबे, आइए पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत कुछ इसके ऊपर पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब यहाँ इस एंगल से देखिएगा, इस बिरु साबिरु व रॉबितु, कि ये दीन राबतों से फैला। पेज क्या है बुक का बोलिए? 515। मुआहदाना रवाबित में सरे फहरिस्त, सरे फहरिस्त किसको कहते हैं? ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट बैते अकबाती है। बैत फिर उसी से होगी ना, हाथ पे है, हाथ रखना, प्लेज करना जिसको कहते हैं, और अकबा घाटी का नाम था। जो बयकदम एक पहलू से मजहबी मीसाक है, ट्रीटी थी, और दूसरे पहलू से सियासी, कुछ इल्हाक, कुछ कह लीजिए कि एग्रीमेंट्स हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं वो रिलीजियस होते हैं ना, और कुछ पॉलिटिकल होते हैं। ये एक ही वक्त में पॉलिटिकल भी थी और रिलीजियस भी थी। पहली बार की मजलिस में मुहसिन इंसानियत के हाथ पर अंसारी नौजवानों ने कबूले रिसालत की बैत की, और दूसरी बार आपकी सियासी क़यादत का अहद भी शामिल किया। पहले क्या थी? रिसालत, कुरान सुन्नत सबसे ऊपर, फिर आपकी सियासी क़यादत, फिर आपको कायद भी मान लिया। मक्का से मीना को जाते हुए रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ों की मतवाजी, मतवाजी क्या कहते हैं? बराबर, पैरेलल दीवारें आती हैं। मीना से कोई एक फरलांग भर पहले बाएं हाथ की पहाड़ी में निसफ दायरे का एक खम है, ऐसे सेमी सर्कल होता है ना, पहाड़ी ऐसे बना हुआ है कि जैसे आप उसके बीच की जगह के अंदर बैठे तो आपके तीन तरफ पहाड़ हो, और इस खम के दामन के तौर पर एक मैदानी कता नजर आता है। यही वो महफूज जगह जहाँ रातों के पर्दे सुकूत सुकूत के जहाँ रातों के पर्दे सुकूत में बैत हाय अकबा वाक़े हुई। एक से ज्यादा थी इसलिए हुई, एक पहली थी फिर दूसरी थी। मदीना में यहूद की मौजूदगी की वजह से अंसार इल्हामी दीन का जौक रखते थे, यानी खुद तो नहीं थे इल्हामी, लेकिन उनको पता था कि इस रिलीजियस लोग कैसे होते हैं, और सिलसिला नबूवत से इन्हें तारुफ हासिल था। नीस आखिरी नबी माऊद की पेशन गोई इनके सामने थी, यानी नबी वो जिसका वादा किया गया था, उनकी किताबों में था, यानी वो नबी जिसके आने की उम्मीद थी। फोरकास्ट, मौसम की क्या पढ़ते हैं? फोरकास्ट। मदीना में यहूद की मौजूदगी की वजह से अंसार इल्हामी दीन का ज़ौक रखते थे और सिलसिला नबूवत से इन्हें तारुफ हासिल था। नीज़ आखिरी नबी मौऊद की पेशगोईयां इनके सामने थीं, और यहूद का ये चैलेंज भी कि जब वो नबी आ जाएगा तो हम इसके साथ होकर तुम लोगों को मغلوب करेंगे। इस तरह अंसार में जहाँ इल्हामी हिदायत की तलब पैदा हो चुकी थी, वहाँ गैर शौरी तौर पर यह जज्बा भी असरअंदाज था कि वो नबी आ जाए तो हम पहले लब्बई कहें। बाज़ लोग खुद हक पे नहीं होते, लेकिन दूसरों के दिल में हक की तलब डाल जाते हैं। कल जो यहूद ने काम किया ना, आज बहुत सारे लोग अपनी शेयरिंग्स करते हैं। हम यहाँ आने से पहले इधर भटके उधर भटके, उनके पास गए उनके पास गए, तड़प थी ना, जैसे सलमान फारसी का किस्सा हमने पढ़ा था। भटकते भटकते इधर से उधर कितनी जगहों से होकर आए, लेकिन बिलआख़िर कबूलियत फिर इस्लाम के लिए उन्होंने रखी और इस्लाम को कबूल किया। इसी के साथ साथ औसो खसरज के दरमियान बाहमी आवेजश आवेजिश खान कशमकश कह लीजिए, या वो रस्साकशी जिसको कहते हैं, हर एक का अपनी बात को सही कहना। औसो खसरज के दरमियान बाहमी आवेजिश का जो सिलसिला चला आ रहा था, इससे थक कर वो एक दौरे अमन के ख्वाहां थे, ख्वाहां ख्वाहिशमंद, मगर रुकावट ये थी, रुकावट हर्डल के दोनों में कोई कबीला भी साबिक साबिक पहले हरीफाना दोस्ती, हरीफ के दहलीफ, हरीफ दुश्मन होता है, सही, कोई कबीला भी साबिक हरीफाना फिजा यानी दुश्मनी की फिजा की वजह से दूसरे कबीले की क़यादत कबूल करने के लिए आमादा ना था। अब वक्त की ज़रूरत थी कि मिल जाए, लेकिन वो पिछली बातें नहीं भूल रहे थे कि हम तुम्हें क्यों बड़ा माने और तुम हमें क्यों नहीं मानो, यानी लीडरशिप। इनको तीसरी ताकत की ज़रूरत थी, इख्तियार, ये सारे वजूह थे, वजूह रीजन्स वजूहात, जिनके ज़ेरे असर मदीना के ज़हीन और शरीफ लोगों को जूं ही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तारुफ हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनने का मौका मिला, तो कबूलियत के लिए इनके दिल खुल गए। नबूवत के चर्चे तो इन तक पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन बिल मुशाफा आमने सामने फेस टू फेस गुफ्तगू ने इन्हें कतई फैसले तक पहुंचा दिया। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत, वजाहत इसका रूट क्या होगा, वजह क्या होता है, चेहरा, तो वजाहत क्या है, पर्सनैलिटी, आपका रोब और शख्सियत का असर जब कलेमाते दावत में शामिल हुआ होगा तो ये जहनी इनकलाब की तकमील हो गई होगी। इतना खूबसूरत जुमला, यानी हक था नबी के पास लेकिन साथ वजाहत भी थी, पर्सनैलिटी भी थी, और जब ये दो चीज़ें मिल जाती हैं ना तो फिर कबूलियत शुरू हो जाती है, जिसके लिए इंसार की फितरत में पहले से आमादगी तैयारी थी, आमादा थे, राजी थे, मौजूद। वो लम्हा एक अजीब नाजुक तारीखी लम्हा था, यानी अंसार पहली बैत के मौके पर मदीना से ये इरादा लेके चले थे कि कुरैश से हलीफाना राबता इस्तवार करें, हलीफाना दोस्ती वाला, और अगर ऐसा हो जाता तो तहरीक इस्लामी की तारीख का रुख कुछ दूसरा होता, यानी अगर ऐसा हो जाता तो ये सारी जंगें नहीं थी होनी जो बाद में हुई। मगर ऐन वक्त पर जमात इंसार का इरादा बदलता है और वो कुरैश का ख्याल छोड़कर इस नई क़ुव्वत से रब्ता जोड़ लेते हैं, जो तारीख के उफक से अपनी इब्तदाई किरणों के साथ आगाज़ तुलू कर रही थी। ये कौन थी? नबी सल्लम। इससे क्या पता चलता है, यानी हक को किसी शहर में कबूलियत कब मिलती है? जब वहां पहले से कुछ लोग हक की तलाश में हो, ये जुमला लिख ले, हक की तलाश में जब लोग होते हैं पहले से और कोई हक लेके वहां पहुंच जाए तो लोग आमन्ना व सद्दकना कहते हैं, दिल दिमाग खोल देते हैं, उनके दरवाजे भी खुल जाते हैं, उनके जहन भी खुलते हैं। और इसके ऑपोजिट बड़े से बड़ा हक परस्त या हक की तरफ बुलाने वाला कहीं चला जाए, किसी को बुला ले, कानों पे जूं तक नहीं रिंगती। करना क्या चाहिए इसमें, मेरा नुक्ता समझ आ रहा है? करना क्या चाहिए, किसी भी जगह हक को मुतारफ कराने से पहले वहां भूख पैदा करें, तलब पैदा करें। याद रखिए ये जुमला, पहले दिलों को नरम करना पड़ता है, उसके लिए कुछ भी करें, कई तरीके होते हैं, वो भी सबको बताए हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरत है इस बात की कि एकदम जाके आप किसी के सर पे रखें ना, सोने जैसी बात करें कोई नहीं सुनेगा, वो तो अभी अपने ही सहर में मुब्तला है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और मैंने किधर करना है क्या। तो क्या हुआ? जो अंसार थे उनके दिल पहले से तैयार थे, अल्लाह के नबी को देखकर उनकी वो अंदर कहने चाहिए कि गर्दिश हुई कि ये है वो जिसका हमें इंतज़ार था। पहली मरतबा की बैत में नबी सल्लम ने चंद एतकाद व अखलाकी उमूर का अहद लिया। ये भी नोट करें, मेरे लिए तो एक एक जुमले में एक एक सबक है। कभी शुरू में इधर उधर की बातें नहीं छेड़ें। क्या करें, एतकाद अकीदा और अखलाक मैनर्स, यानी वायदा बांधने वाले अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना गर्दानेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, औलादों को कत्ल नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ कोई बोहतान नहीं घड़ेंगे और मारूफ के दायरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करेंगे। जी आप लोग बताइए कि कुरान में ये बात कहाँ मौजूद है जो हमने पढ़ी आखिरी सूरत मुमतहना। जी गुड, आखिर एंड है सूरत का, सूरत मुमतहना के एंड पे ये अहद मौजूद है कि ये नहीं करेंगे। दूसरी बैत में अंसार ने इन उमूर का इजाफा किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर हाल में समाव तात से काम लेंगे, चाहे मुश्किलात दरपेश हों या आसानियाँ हों, हमारे दिलों को कोई हुक्म पसंद हो या नापसंद, और ख्वाह कोई बात हमारी राय के खिलाफ हो रही हो, और ये कि हम अहले क़यादत से कशमकश नहीं करेंगे, और ये कि हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। बात समझ गया? पहली बात है अगले का दिल दिमाग क्लियर करने, बाकी फिर उससे समाओ इताद की बातें लेना, ये बात की बात होती है। इन मुख्तसर अल्फाज में गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंसार के दरमियान सियासी राबता उस्तवार हो गया। आज के सियासतदानों को भी ये टिप्स देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, कभी भी मुल्क में इस्लाह नहीं होगी। मजहबी रहनुमा सियासी रहनुमाओं को काफिर और फाजिर और फासिक और कुछ कहते रहे और वो उनके बारे में कुछ नाज़ेबा बातें बोलें, इससे कभी भी इस्लाह नहीं होगी। और इस जमात ने वाज़ेह तौर पर एक सियासी जमात की हैसियत अख्तियार कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत को उन्होंने समा व तात के साथ पूरी तरह कबूल किया। ये इकरार भी बांधा कि अरबाब एक क़ियादत। जी ये अरबाब क़ियादत क्या है? देखिए लफ्ज़ अरबाब क्या है, रब, रब कौन होता है? नश्वनुमा देने, तो अरबाब क़ियादत जो क़ियादत को बढ़ाते हैं यानी उसकी नश्वनुमा करने वाले। ये इकरार भी बांधा गया कि अरबाब क़ियादत के ख़िलाफ़ कोई कशमकश ना की जाएगी और जाहो मनसब को झपटने छीनने और झपटने के लिए कोई इकदाम ना होगा। ये हाईलाइट करें, आज है ऐसे इकदाम, जायदादें बिक जाती हैं कि हमें वोट दो, छीना झपटी पड़ी होती है वोटों के लिए। मैं सोचती हूँ अल्लाह के नबी कितने जीरक इंसान थे। लव जीरक भी छोटा है, जीनियस भी छोटा है। जो अल्लाह के नबी की ये स्ट्रेटेजीज को पढ़कर आपसे मोहब्बत महसूस होती है ना, ये सारी ज़िंदगी नहीं हुई अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते। तो किसी इंसान को आप जितना करीब से देखेंगे ना, आपको फिर उसकी खूबियाँ या अगर कोई उसमें कोई खामी है तो वो उतनी ज़्यादा दिखेंगी। मशावरत का असूल तय पा गया। जी मशावरत, काम मशवरों से। देखिए एक होता है मशवरा, या मशवरा नहीं है, मशावरा मुफाअला, आपस में मशवरा, यानी कोई काम भी मशवरे के बगैर नहीं होगा, ये मुराद है। ठीक है, मुशावरत का असूल तय पा गया कि हर मौके पर हक बात पेश की जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे हम भी यही असूल बना लें अपने इदारों के। और इकामत दीन की जिद्दोजहद के बारे में पैमान बंध गया कि जो जो कुछ फ़राइज़ व मुतालबात और ज़िम्मेदारियाँ हम पर आयद होंगी, इन्हें दुनिया भर के तानो मलामत से बेनियाज होकर सर अंजाम देंगे। हाईलाइट करूँ इसको? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकामत दीन की ना, अकीमुद्दीन, सूरह शूरा का तो पूरा थीम ही है। अल्लाह के नबी ने शुरू में तबलीग की थी, आप कह लीजिए कि मक्का में तबलीग हुई, मदीना में इकामत हुई। मक्का में तबलीग दीन थी, मदीना में इकामत दीन थी। तबलीग तन्हा हो सकती है, बल्लिगन्नी वलो आया, इकामत अकेले नहीं होती। मक्का में नबी सल्लम ने पैगाम खुद दिया, अकेले बात की, दूसरों ने कर दी होगी। मदीना में जो कुछ हुआ ये मुशावरत के साथ, अस्हाब रसूल की मुआवनत के साथ हुआ। तो किसी भी सोसाइटी में दीन को कायम करना है, उसकी जिद्दोजहद है ना, तो कुछ लोगों पर कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, उनसे कुछ मुतालबात रखे जाते हैं, और अगर उनमें से कोई अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह अदा ना करे, चाहे वजह लोगों के ताने हो या मलामत हो या कोई मजबूरियां हो, तो काम नहीं होता। मेरे लिए और आपके लिए इसमें अमल है सीधा सीधा, जो जिम्मेदारियां हमें दी जाएं उसको जान पे खेल कर अदा कर दें। मस्कीन बनकर बैठ जाएं, अल्लाह अगले दिन आपकी मदद कर देगा। और अगर हम कहते हैं चलो तुम रूठे हम छूटे, देखिए आप बुरा नहीं कर सकते ना, थोड़ा कर लें, जाके नहीं कर सकते घर से वो काम कर लें, ज़्यादा दिन नहीं अल्लाह करवाएगा। मुझे किसी की बात याद आती है, अब ये टोटका हो सकता है या कुछ भी है, किसी की अच्छी बात है, वो कहते हैं कोई काम नहीं हो रहा ना, अटक गया मामला, रोज़े रखने शुरू कर दो इस नीयत से। कहला मैंने भी नहीं छोड़ने रोज़े, लाड मन्नत प्यार मिन्नत, 3 दिन से ज़्यादा अल्लाह आपको रोज़े नहीं रखाएगा। ये अब उनका तजर्बा होगा, 2 दिन में भी काम हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। अल्लाह के साथ लाड नहीं करने आते हमें, नहीं अल्लाह जी मैंने नहीं ऐसे करना। और बाज़ दफ़ा जब कुरान नहीं पढ़ा होता तो लाड करने में हम बदतमीज़ी बड़ी कर देते हैं, ये भी मसला है। बेहतरीन वो बंदा है कि जो अल्लाह को रब समझे, उसके 99 नेम्स को समझने के बाद उससे लाड करे, देखें कैसे नहीं होते काम। अल्लाह जी मैंने नहीं ऐसे जीना, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे मैंने नहीं बीमार रहना, अल्लाह जी मुझे सही करें, बस मैंने आपको कह दिया प्लीज़, मैंने कह दिया मैंने बीमार नहीं रहना, अल्लाह नहीं रखेगा आपको बीमार, मैंने इस परेशानी में नहीं रहना, अल्लाह जी आप मुझे निकाले। जैसे आती है ना वैसे ही चली जाती है, तकलीफ़ आती है बड़ी इस रास्ते में, आती दिखती नहीं, जाती दिखती नहीं है। याद रखिए ये इकामते दीन की जद्दोजहद, असल ये है आपका मेरा जिहाद टिल द डेथ, मरते दम तक जो जो फ़राइज़ और मुतालबात और ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर आयद हैं, मुझे उनको निभाना है। और न ताने न मलामते, अब तो ताने देने वाले भी थक गए होंगे, मलामत करने वाले हैं कोई जो आपको रोक सके अब किसी बात पे कि आप ये क्यों करते हैं? वो कहेंगे जो करते हो करते रहो, अब हमें ना छेड़ो। ये ऐसी बैत थी कि इसके बाद जू ही कतए अरदी टेरिटरी बोलते हैं इसको, इस जमात के ज़ेरे असर आ जाए, जिसमें इसके ऊपर कोई और सियासी इकतदार कार फरमा ना हो बल्कि क्यादत इसके अपने हाथों में हो, तो ये जमात मान, मान क्या होता है, फौरन जी एक रियासत में बदल जाएगी। हाईलाइट करें कितनी बड़ी बात कह दी गई और आपने सोची भी नहीं। पहले क्या था वो आप देखिए, क्यादत पहले एक जमात की सूरत में थी, ग्रुप था, फिर रियासत बन जाएगी, इस तरह पे ग्रो करेंगे, या यूं कहिए कि इस्लामी रियासत का हिस्सा बन जाए। हमेशा हम क्या चाहते हैं ना, आप पाकिस्तान के लिए आज तक क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, फिर कोई करने देता है कोई नहीं करने देता, आज तक पाकिस्तान इस्लामी क्यों नहीं बना, क्योंकि वहाँ इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। जो बात अभी हम पढ़ रहे हैं इससे मुराद क्या है, जब अफराद अपने तौर पे अपनी बैत अपनी कमिटमेंट अपनी जिम्मेदारियों को इस हद दर्जे पे अहमियत देने लग जाते हैं ना, तो वहाँ ज़बरदस्ती इस्लाम का नफाज करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। वो एक फ़र्द के ऊपर इस्लाम नाफिज हुआ, दूसरे पे हुआ, तीसरे पे हुआ, वो छोटी सी जमात एक रियासत बल्कि रियासत इस्लामी रियासत बन जाती है। यानी वहाँ डंडे के ज़ोर पे कवानीन नहीं निभाने पड़ते, ये नहीं कहना पड़ता कि ज़कात कमेटियाँ बनाओ ताकि लोगों से ज़कात वसूल की जाए और इसी तरह की बातें, मतलब ये कि काम आसान हो जाता है। इन उमूर के साथ मज़ीद ये भी तय पा गया कि नबी सल्लम के मदीना मुंतकिल होने, मुंतकिल शिफ्ट होना, माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोली आपने। वो एक बंदा था कहीं, तो गांव के 2 बच्चे पढ़ने गए और शहर से इंग्लिश पढ़ कर आए, गांव में एक कोई मास्टर साहब भी कोई रहते थे पहले से जिनको भी इंग्लिश आती थी, सारे गांव को इकट्ठा कर लिया कि मुकाबला कराते हैं और आज प्राइज़ देते हैं कि दोनों में से अच्छी इंग्लिश कौन सीख कर आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुला लिया। और अब वो जज कौन बने, सारे गांव में था ही कोई नहीं बेचारा, वो एक मास्टर साहब थे पुराने ज़माने के, उनको बिठा दिया कि जी आप दोनों के बीच में सालिस बन जाए। उसको भी कहा तू भी बोल वो भी बोल, उसने भी पूरी कहानी सुनाई, दूसरे ने भी सुनाई कि आई हैव अ ग्लास एंड आई पुट इट ऑन द टेबल, और जो बोल सका बोलता रहा। दोनों ने बड़ी अच्छी बोली, आपकी ज़ुबान में बड़े फ्रेंक थे। आप जी जज साहब फैसला करें, कहने लगा दोनों ने बड़ी अच्छी बोली है लेकिन वो पहला जो था ना वो पास है, तो वो पहले पे आ गया ये दूसरे पे। तो दूसरे ने कहा कि मेरा कसूर क्या है, मैं दूसरे पे क्यों? कहता तूने एक लफ्ज़ बीच में उर्दू का बोला है और तूने ग्लास बोला है, समझ आई है? तो आज आपको भी पता चल गया कि ग्लास उर्दू का नहीं, इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो जब जज ऐसे होंगे तो फिर आप सोच लें कि लोगों के साथ क्या होगा। हम चलिए, नबी सल्लम के मदीना मुंतकिल हो जाने पर माहदा बांधने वाले अंसार नबी सल्लम की ऐसी ही हिफाजत करेंगे जैसी कि वो अपनी अजवाज औलाद की करते हैं। यहाँ तो मुझे हज़रत अब्बास का वो खिताब याद आ गया। खुद कुफर पे थे, इस्लाम नहीं कबूल किया हुआ था उस वक़्त तक, लेकिन जब पता चला कि ये मदीना वाले अल्लाह के नबी को बुला रहे हैं तो क्या कहा? इसके साथ दीन का झगड़ा हमारा अपनी जगह है, लेकिन हमारा भतीजा, अगर इसको जाकर छोड़ना है तो भी छोड़ दो। क्या वो उनकी बेजिगरी की तकरीर थी? वही इधर याद कर लीजिए, मदीना की इस्लामी जमात और नबी सल्लम के दरमियान दिफाई वहदत का ताल्लुक भी कायम हो गया, और इस लिहाज से बैत अकबा की सियासी कदरों कीमत और ज्यादा बढ़कर इनकलाबी हो जाती है। इनकलाब तो बहुत बड़ा, ये मदीना की जिंदगी में। फिर नबी सल्लम के इरशाद से सारे मदीना की इस्लामी जमात की तरफ से 12 12 नुमाइंदा नकीब नामजद किए जाते हैं, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाब दें हैं। इन नकीबों के सर दावत इस्लामी को फैलाने के अलावा सियासी जिम्मेदारी भी डाल दी गई। बकौल अब्दुल्ला बिन अबू बकर, नबी सल्लम ने इन नकीब, नकीब कौन होते हैं जिनको ऊपर मुकर्रर किया जाए? नकब का लफ्ज़ सुना? तो नकीब, नकब लगाने वाला। एक है लफ्ज़ रकीब, रकब होता, रकीब होता है जिसकी नज़र आपकी गर्दन पे हो, दुश्मन। और नकीब यानी अंदर घुसकर सुराख करने वाला, मुराद इससे लीडर है, जो आपके सर पे जिम्मेदारान है वो कह लें। तो जिम्मेदारान नकीब होने चाहिए, हर चीज़ पे उनकी गहरी नज़र होनी चाहिए, ये मुराद है। क्या फरमाया आपने इनसे? तुम लोग अपनी अपनी कौम के इसी तरह जिम्मेदार हो जैसे हजरत ईसा के सामने इनके हवारी जिम्मेदार थे, और मैं भी अपने गिरोह यानी मक्की जमात का जिम्मेदार हूँ। यानी अल्लाह के नबी ने देखे उनको कैसे एहसास दिला दिया कि तुम्हारा काम कितना अहम है। नकीबों के तसव्वुर के साथ मदीना के लिए जो तंजीमी हैयत, हैयत क्या होती है, ढांचा, स्केल्टन, तश्कील दी गई, वो फक्त मजहबी ना थी बल्कि सियासी इनकलाबी थी। ऐसी हैयत की फितरत तकाजा करती है कि वह जल्द अज जल्द पहला मौका मिलते ही रियासत की शक्ल इख्तियार करे। आलिम वाक़िया में हुआ भी यही कि नबी सल्लम के जाने के चंद माह बाद इस्लामी रियासत की नींव, नींव क्या होती है, बुनियाद डाल दी। नी बोलते हैं ना, नी रखी आज, वो नी वही है यानी बुनियाद डाल दी। गोया इस्लामी तहरीक इब्तदाई दावत का दौर पूरा करके सियासी तामीर के दौर में दाखिल हुई तो माहदे के जरिए दाखिल हुई, ना कि जंगी कुव्वत का इस्तेमाल करके। क्या पता चला? 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, ये स्ट्रेटजी चाहिए थी। आज तो बहुत दिन गुजर गए ना। याद रखिए कि मुल्क चलाने, रियासतें चलानी आसान काम नहीं है, इसके लिए जिस्मानी ताकत से ज़्यादा जहनी कुव्वत चाहिए होती है, और अल्लाह ने नबी को ये दी थी। बेहतरीन स्ट्रेटजी होती कि दिमाग लीडर का हो और हाथ कारकुनान के हों। सहाबे कराम सिर्फ एक इशारा लेते थे अल्लाह के नबी से और उस रास्ते पे चल पड़ते थे, और जो बात मानता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। तो मदीना में फिर इस्लाम के आने की वजह क्या बनी, यानी सारी बात का खुलासा कि किसी मुल्क में जब मुसलमान दाखिल हों तो वहाँ के सियासी निज़ाम को साथ मिलाकर इस्लामी बुनियादों के ऊपर ढाल ले, ये मुराद है। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ पहले से हो रहा होता है। अल्लाह के नबी सल्लम के राबतों की आदत से यहाँ असल में ये सिखाया गया कि आपने अपनी अलग थलग गई एक छोटी सी मस्जिद नहीं बना ली, या अपने जहन के मुताबिक चंद लोगों को इस्लाम देकर कहा कि बस अभी आप ही मुसलमान हैं। आपने एक जनरल लेवल पर पूरे शहर को सामने रखते हुए लोगों के लिए दीन पे चलना आसान कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें भी आप एक और चीज़ सीखेंगे इंशाल्लाह।